वर्स 48 में वो बोलते हैं कि जो पूरा संसार जो नज़र आ रहा है वो आत्मन ही है, आत्मन के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि जितने भी चीज़ें जो मिट्टी से बनी होती हैं वो हमें अलग अलग नज़र आती हैं, घड़े, गमले, दिए, अलग अलग तरह के साइज़, अलग अलग तरह के नाम और रूप, लेकिन है तो क्या मिट्टी ही है ना। तो जैसे कि आप हर घड़े में मिट्टी को देख सकते हो, ऐसे ही जो ज्ञानी है वो हर जीव में, हर चीज़ में सिर्फ आत्मन को ही देखता है, वो आत्मन के अलावा और कुछ भी नहीं देखता। अब यहाँ पे जो इनका वर्ड्स था उसमें इन्होंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, एक है इदम और एक है अहम, और भी बहुत सारे हैं। तो इदम का मतलब होता है दिस और अहम का मतलब है आई। तो इस वर्स में इदम का मतलब है संसार और मैं जो हूँ वो चैतन्य। जो संसार है वो जड़ है और मैं चैतन्य हूँ। तो इदम अहम, मैं हमेशा हूँ, आई एम इटर्नल। लेकिन ये जो संसार है ये नाशवान है, ये नाश हो जाएगा। आई एम ऑल परवेडिंग, मैं हमेशा हूँ, हर जगह हूँ। लेकिन ये जो संसार है इसकी एक लिमिट है ना, इसका एक टाइम और स्पेस है। फिर से उन्होंने वही बोला, चाहे एक घड़ा हो चाहे बहुत सारे घड़े हों, मिट्टी सब में एक ही है। इसी तरह से कितने भी जीव हों, बहुत सारे जीव नज़र आ रहे हैं, अभी यहीं पे हमें 15 लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो आत्मन है, जो सेल्फ है, वो एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है उसके अंदर। और जो ज्ञानी है वो खुद को ही सब में देखता है ना। और दूसरा तरीका है वो सबको मैं ही देखता है। कैसे देखता है? आत्मन ही देखता है, सेल्फ ही देखता है, वो नाम रूप नहीं देखता है ना। एक तरह से इसका कहने का मतलब है कि जब एक घड़ा दूसरे घड़े को देखता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं घड़ा हूँ और ये भी घड़ा है, वो देखता है मैं भी मिट्टी हूँ और वो भी मिट्टी है ना। वो उसमें नहीं जाता कि मैं छोटा हूँ वो बड़ा है या मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी ही देख रहा है। तो वो क्या कहते हैं, अगर तुम घड़े पे ध्यान दोगे तो तुम मिट्टी को नहीं देख पाओगे। माया क्या है? देखो, माया में हम सबको अलग अलग देखते हैं, है ना, जीव देखते हैं। हम बोलते हैं ये बहुत सुंदर है, ये कुरूप है, ये बहुत धनी है, ये गरीब है, ये बहुत पावरफुल है ना। हम हर चीज़ में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये मोटा है, ये पतला है। हम किस में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट? नाम और रूप में। लेकिन जो ज्ञानी है वो आपके नाम रूप को नहीं देख रहा है, वो जो रियलिटी है उस नाम रूप के पीछे क्या है, उसके पीछे तो क्या है, आत्मन ही है। तो वो आत्मन को ही देख रहा है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखो, जैसे हम घड़ा और मिट्टी का बोलते हैं, या आभूषण और सोने की बात होती है, कि अगर हम देखें ये इयररिंग्स हैं, एक तरीका देखने का है कि ये इयररिंग्स हैं, दूसरा तरीका देखने का है कि ये चांदी है ना। अगर सोने का पहना हो कि ये नेकलेस है या ये सोना है, तो नेकलेस, इयररिंग्स, रिंग सब अलग 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 हो गए, लेकिन उन सब के पीछे सोना तो एक ही है ना। या फिर जब आप अपने घर में कोई फर्नीचर देखते हो, आप बोलते हो ये कुर्सी है और ये टेबल है, और दूसरा तरीका क्या है देखने का, कि लकड़ी है ना, लकड़ी तो सब सेम ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही ज्ञानी सब में आत्मन को ही देखता है। तो ये हमारा वर्स 48 ख़त्म हुआ। ये तो बहुत ही छोटा सा था, प्यारा सा। तो अब चलते हैं वर्स 49 पे। यहाँ पे वो कहते हैं, एंडोर्ड विद सेल्फ नॉलेज द लिबरेटेड एनलाइटेंड बीइंग लीव्स ऑल द ट्रेड्स ऑफ द उपाधीज। देखो, आप लोगों ने सबने सुना होगा उपाधि। उपाधि होता है सुपर इम्पोजिशन। उप का मतलब क्लोज और आधि का मतलब सिट। हु सिट्स क्लोज बाय, ओके। तो क्या होता है, अब सेल्फ के, आत्मन के सबसे पास कौन बैठता है? बुद्धि बैठती है ना। उसके बाद मन बैठता है, फिर इंद्रियां बैठती हैं, फिर शरीर बैठता है, और उसके बाहर क्या है, ये जो संसार नज़र आ रहा है ये है। इज़ इट क्लियर? पहले आत्मन है, आत्मन के बाद बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर और ये संसार है ना। तो ये सब किसके पास बैठे हैं, ये किसकी उपाधियाँ हैं? इस सेल्फ की उपाधि, उपाधि मतलब इस सेल्फ के पास बैठी हुई हैं। जैसे कि अगर हम एक शीशा लगा दें बड़ा सा, और उस शीशे के पास रख दें 10-12 चीज़ें, है ना, तो शीशे के पास वो चीज़ें रखी हुई हैं जो शीशे में नज़र आ रही हैं। तो आगे वो क्या कहते हैं कि जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये सारी चीज़ों को मैं माना जाता है, है ना। ये सारी जो आपकी बुद्धि है उसके जो भी गुण हैं उनको मैं माना जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आता है, अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, नहीं मैं बहुत यंग हूँ, नहीं मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना। हम अपने ये बोलते हैं कि नहीं, ये कौन बोलता है, बुद्धि से आ रहा है ना ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये क्या हैं, दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी मिस्टेकन टू बी माय एट्रीब्यूट्स। तो आई एम ओल्ड, आई एम यंग, आई एम हेल्दी, आई एम सिक, ये कौन बोलता है, शरीर बोल रहा है। ये शरीर की उपाधियां हैं, मेरी उपाधि नहीं है, लेकिन क्योंकि शरीर आत्मन के पास बैठा है तो इसलिए लगने लगता है कि ये मैं हूँ। हम यही करते हैं ना। फिर वो क्या बोलते हैं कि आई एम डम्ब और इंटेलिजेंट, मैं बहुत मूड हूँ या मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये बुद्धि की उपाधियाँ हैं। या मैं तो बहुत पाप करती हूँ या मैं बहुत पुण्य करती हूँ, ये भी किसकी उपाधियाँ हैं, ये मन की उपाधियाँ हैं। लेकिन जैसे ही आपका अज्ञान हटता है, जैसे ही अज्ञान का नाश होता है, तो आप क्या समझते हो कि ये सब मेरी गुण नहीं है, ये मेरी उपाधि नहीं है। अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा आगे बहुत ये मुझे बहुत अच्छा लगा एग्जाम्पल दिया है। शंकराचार्य गिव्स एन इंट्रीगिंग एग्जाम्पल ऑफ अ वॉस्प। वॉस्प होता है हिंदी में जो भिरड़ होती है ना, एक तो होती है हनी बी मधुमक्खी और एक होती है भिरड़, येलो येलो कलर की होती है। तो ये बोलते हैं कि ये मुझे भी नहीं पता था कि जो भिरड़ होती है वो कीड़े खाती है। ओके, फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई कीड़ा जो भिरड़ के छत्ते में घुस जाता है, अब भिरड़ क्या करती है, वो उसको डंक मारती है और उसके आसपास घूमती रहती है, वो जू 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 करती हुई पूरा चारों तरफ चक्कर लगाती है। और आपको पता है क्या होता है, वो जो कीड़ा है वो भिरड़ बन जाता है। वो जिस कीड़े को इसने डंक मार के उसके चारों तरफ घूमती है वो कीड़ा भिरड़ बन जाता है। ये मुझे भी नहीं पता था। अब वो कह रही हैं कि आप सोचोगे कि बायोलॉजिकली कैसे हो सकता है ये, तो वो कह रही हैं इस चीज़ को छोड़ो, इसमें मत जाओ कि बायोलॉजिकली कैसे हो सकता है। ये एक मेटाफॉर है, ये आपको समझाने के लिए दिया जा रहा है। और अब देखो उन्होंने कितना सुंदर बताया है। वो बोलते हैं कि जैसे कि वो भिरड़ उसको डंक मार के उसको घूम के भिरड़ बना देती है ना, बिल्कुल ऐसे ही जो गुरु है वो क्या करता है, वो शिष्य को डंक मार के चारों तरफ उसको सारा दिन आत्मज्ञान 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 बताता रहता है जब तक कि शिष्य भी गुरु ना हो जाए उसका पाठ पढ़ाता रहता है चारों तरफ हर समय हर समय। एस्टैब्लिश्ड इन द रियल सेल्फ ही बजेस द ट्रूथ अराउंड द डिसाइपल एंड इवेंचुअली द डिसाइपल कॉम्प्रिहेंड्स एंड रियलाइजेज आई एम द सुप्रीम सेल्फ हु ब्रिंग्स अबाउट दिस रेडिकल मेटामॉर्फोसिस द मास्टर। कितना सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है ना कि यही काम गुरु कर रहा है। जैसे भिरड़ ने उस छोटे से कीड़े को भिरड़ बना दिया घूम घूम के, गुरु भी वही काम कर रहा है। तो जब शिष्य गुरु के पास आता है तो उसके पास सारी फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, है ना। वो ये सोचता है मैं ये शरीर हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, या मैं तो बहुत दानी हूँ, या मैं बहुत दुखी हूँ, या मैं बेवकूफ़ हूँ, या मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। मास्टर हम्स द सॉन्ग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। तो जो गुरु है वो हर टाइम आत्मबोध का गाना गाता रहता है उसके आसपास। एंड सूनर और लेटर द डिसाइपल्स इंटेलेक्ट फैथम्स द एनलाइटनिंग ज्ञान, है ना। तो धीरे या जल्दी में शिष्य को भी समझ में आ जाता है और वो सारे उसके जो झूठ हैं वो गिर जाते हैं। वो जो गुरु के पास आता है अपने दिल में एकदम ग्लूम, उन्होंने क्या बोला, डूम एंड ग्लूम लेके, सब कुछ बहुत दुखी, इतनी परेशानी, बाप रे इससे ज़्यादा दुखी तो कोई होगा ही नहीं पूरी दुनिया में, ऐसा वो लेके आता है और गुरु के पास आके वो पूरा का पूरा खिल जाता है। तो जो दुखी जीव है वो क्या बन जाता है, बहुत आनंदमय आत्मन बन जाता है वहाँ पर आके। और फिर वो कह रहे हैं कि देखो, याद करो, तुम पहले से ही आत्मन हो, है ना। ऐसा नहीं कि तुम्हें बनाया जा रहा है, लेकिन गुरु तुम्हारी जो रियल आइडेंटिटी है उसको रिवील कर देता है, तुमको अनवेल कर देता है, जो छुपी हुई थी। किसमें छुपी हुई थी? इन उपाधियों के पीछे छुपी हुई थी। तुम उन उपाधियों में ही फंसे हुए हो, वहाँ पे वो कर देता है। और जब ये ज्ञान उस शिष्य को होता है तो वो हमेशा आनंद में रहता है। और फिर वो कहती है, मैं वापस से बताती हूँ, सिर्फ एक मास्टर ही, एक गुरु ही तुम्हें अज्ञान के क्लचेस से बचा सकता है। जो अज्ञान ने तुम्हें जकड़ा हुआ है ना, एक गुरु के अलावा तुम्हें और कोई भी नहीं बचा सकता। और ये जो तुम्हारा जन्म और मरण का चक्र है, जो जिस चक्रव्यूह में तुम फंसे हुए हो, उससे भी सिर्फ तुम्हें गुरु ही निकालेगा। नहीं तो तुम बिना किसी डायरेक्शन के इस घने जंगल में घूमते रहोगे और बार बार कंटीली झाड़ियों में घुसोगे, पत्थरों से टूटोगे, ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानियाँ आएंगी, दुखी होगे और अज्ञान में रहोगे। तो यहाँ पे उन्होंने गुरु का ही दिया है, गुरु इज़ द सेवियर, द रिडीमर हु डिलीवर्स यू टू द इटर्नली लिबरेटिंग डेस्टिनेशन ऑफ एनलाइटनमेंट। शायद आप लोगों को लगता होगा यहाँ पे ना, सब लोग गुरु की इतना सब महिमा गाते ही रहते हैं, गुरु माँ भी बोलती हैं, लेकिन और बहुत सारे लोगों को तो गुरु को लेके वैसे ही नेगेटिव आइडियाज़ भी रहते हैं, है ना। लेकिन फैक्ट ये है कि बात यही है। अब जैसे क्या है, अगर सपोज़ किसी को कोई बहुत भयानक बीमारी हो जाए आपकी बॉडी में, है ना, सपोज़ कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गया या फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, अब क्या बोलेंगे? किसी को भी बोलोगे कि मुझे ये बीमारी है तो वो लोग क्या बोलेंगे, कहाँ जाओ? सर्जन के पास जाओ, है ना, डॉक्टर के पास जाओ। जो सर्जन है वो ही ठीक कर सकता है, है ना। आपके माँ बाप कितने ही आपको प्रेम करते हों, आपकी फैमिली कितना ही प्यार करती हो आपको, क्या वो आपका कैंसर ठीक कर सकती है? क्या वो आपका जो हार्ट डिजीज़ हो गया वो ठीक कर सकती है? नहीं कर सकती ना, एक सर्जन ही करेगा। अगर आपको अपना घर बनवाना है, कंस्ट्रक्शन करानी है, आप किसके पास जाओगे? बिल्डर के पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास, जो वो जानता है वही करेगा ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी ऐसा ही है, और कोई बात नहीं है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आपको संसार की कोई भी चीज़ करानी है तो आपको संसार में वो जिसने उस पे काम किया है उसकी ज़रूरत होगी। घर में आपका नल खराब हो जाएगा तो प्लम्बर को बुलाओगे, और लाइट खराब हो जाएगी तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, है ना। तो ऐसे ही जब आप अज्ञान में फंसे हो, अज्ञान के अंधकार में, वहाँ पर गुरु ही काम आएगा। क्यों गुरु काम आएगा? कि जो जगा हुआ है, जिसने अपने आत्मन को जान लिया है, सिर्फ और सिर्फ वो ही आपको जगा सकता है, और कोई नहीं जगा सकता, कोई भी नहीं। इसीलिए गुरु की इतनी महिमा है। अब डिपेंड ये करता है कि किसको क्या काम है, है ना। दुनिया में बाकी लोगों को तो गुरु से अभी काम ही नहीं है, बहुत कम लोगों को गुरु चाहिए होता है, सबको तो गुरु चाहिए भी नहीं। प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा काम के हैं, और सबसे ज़्यादा काम की तो मेड है है कि नहीं? गुरु मिले ना मिले, मेड ज़रूर आनी चाहिए। तो फिर वो इसीलिए आगे बता रही हैं कि कबीर ने तभी बोला है, वो है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो मिलाए, है ना। कि अगर जब दोनों में से हमेशा सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम किया जाता है, क्योंकि गुरु ने ही दिखाया कि कहाँ वो भगवान छुपा है। तो वो जैसे सहजोबाई का आपको याद आया होगा, वो तो बहुत उल्हाने देती हैं भगवान को कि तुमने तो मुझे फंसाया, गुरु ने ही निकलवाया बाहर, है ना। ये इनकी ना फोर लाइंस बहुत अच्छी हैं, पहली वाली, वो तो उन्होंने कुछ गाया रहेगा हिंदी में, ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। से हेलो टू योर सेल्फ, बिलवड मास्टर सेज दस। देखो, से हेलो टू योर सेल्फ, जो आपको पता ही नहीं था वो गुरु ही दिखाता है। इंट्रोड्यूसिंग मी टू माई सेल्फ, द कन्विक्शन इज नाउ रोबस्ट, है ना। रोबस्ट मतलब यहाँ पे आप फिर स्थापित हो जाते हो, गुरु आपको एकदम उसके दर्शन करा देता है, ये लो तुम्हारा रियल सेल्फ, ये रहा, देखो, दिखा, और फिर आप उसमें स्थापित हो जाओ।